ओम शांति। आप सभी भी प्यारे बाबा के गुण गाते हुए अपने सभी भाई बहने जिन्होंने भी भट्टी की क्लासेस कराई है उन सब का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मान ही रहे होंगे। पहले भी एक बार बनारस से सभी लोग भट्टी करने के लिए आए थे और अभी ये दूसरी बार आए हैं, तो हर एक का बहुत अच्छा अच्छा अनुभव इसमें होता है। अभी भी बीच में मेरे पास भाई बहने आते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ, वो भी बहुत खुशी से अपना अनुभव सुनाती हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, अगर हम नहीं आते तो बहुत कुछ खो लेते। तो मैं यही कहती हूँ कि आप सभी बाबा का लाख लाख शुक्रिया करते करते भट्टी में जो जो भी अनुभव किए हैं तो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ अल्पकाल के लिए ही अनुभव है, लेकिन उस अनुभव को अपने सारे जीवन भर के लिए ये अनुभव बनाना है, स्थायी बनाना है। केवल यहाँ जब तक है उस भट्टी का आनंद आ रहा है, अनुभव कर रहे हैं, लेकिन नहीं उसको जिंदगी भर के लिए ऐसा अनुभव हम चलते फिरते भी करते रहे, ऐसा ही लगे कि बाबा हमारे साथ हैं, हम मधुबन में हैं और भट्टी में हैं, बाबा से बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मुझे मिल रही, ऐसा आप सबको अनुभव होता रहे। हमने तो देखा कि हम सभी तो शुरू से ही मधुबन में बाबा के पास आते रहे और मैं तो अपने को बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा समझती हूँ कि बाबा ने मुझे स्वयं ऐसे स्थान पर भेजा जहाँ बाबा को साक्षात्कार हुआ, प्रथम साक्षात्कार, और बाबा ने वहीं से अपने जीवन को उसी समय से परिवर्तन कर लिया और मन ही मन में अपना सब कुछ वहाँ ही बाबा ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि बाबा ने जो उनको साक्षात्कार कराया था तो वो यही कराया था। पहले तो विनाश का सीन दिखाया कि ये दुनिया अभी कैसे खत्म होने वाली है और फिर तुम्हें क्या बनना है वो भी दिखाया, क्योंकि विनाश का सीन देख करके तो बाबा के मन में थोड़ा उथल पुथल भी आई कि अच्छा ये ऐसे सृष्टि खत्म हो जाएगी तो अभी क्या करना चाहिए। फिर बाबा ने उनको साक्षात्कार भी कराया कि देखो तुम ये थे, फिर तुम्हें अभी ये बनना है। और मैं आकर के जो कार्य कराता हूँ वो तुम्हें भी करना है। तो बाबा ने एक सेकंड में मन ही मन में अपने सारे फैसले ले लिए, देरी नहीं लगाई, सोचा भी नहीं, अपने परिवार से राय भी नहीं ली कि मैं क्या करूं इसके लिए, लेकिन यहीं से बाबा ने संकल्प किया और संकल्प करके तुरंत कलकत्ता में जो बाबा की गद्दी थी वहां जाके अपना सब हिसाब किताब मांगा कि मेरे पास जो भी आपके पास है, अपने भागीदार को कहा कि बस उतना ही मेरे को दे दो। उसने कहा कि आपका ही तो सब कुछ है तो हम कैसे उतना दे सकते हैं, क्योंकि कैश में तो होता नहीं है ना पूरा। तो बाबा ने कहा कि जो भी आपके पास है कैश में बस उतना ही दे दो। तो क्योंकि मैं रुक नहीं सकता हूं, एक सेकंड भी नहीं रुक सकता हूं, इंतजार नहीं कर सकता हूं, इसलिए जो हो वही दे दो बाबा, लेकर के तुरंत अपने घर में सिंध में मतलब गए। और बाबा ने परिवर्तन तो सब अपना कर ही लिया था, बाबा को जो दिव्य साक्षात्कार हुए तो सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं, हम तो ये समझते हैं कि बाबा की दिव्य प्रवेशता उसी समय बाबा के अंदर हो गई। बाबा ने कहा ना कि ये बता नहीं सकते, समय नहीं बता सकते कितने बजे शिव बाबा ने उसमें प्रवेश किया, कब प्रवेश किया, लेकिन जो एकदम उनके जीवन में परिवर्तन आया तो उसमें बाबा ने जैसे उनके अंदर प्रवेश किया उनके विचार उनके सब कुछ बदल गए। और बाबा ने जाकर के जैसे जैसे बाबा अपने घर में पहुंचे तो जाते तो हमेशा रहते थे लेकिन वो अनुभव को बाबा के द्वारा कोई नहीं करते थे जो यहाँ से जाने के बाद बाबा से लोग उनसे मिलने वाले उनके मित्र संबंधी उनके परिवार के लोग जो अनुभव करते थे वो पहले कभी नहीं हुआ था। तो बाकी कहानी तो आप सभी जानते ही हैं, बाबा ने कैसे गुरु किए, उनके द्वारा उनको प्राप्ति नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो तो सुप्रीम सोल परमात्मा का रथ बनने वाले थे, उनके द्वारा उनको इतनी सारी प्राप्तियां बेहद की होने वाली थी तो वो हद के गुरुओं से तो कभी संतुष्टि हो नहीं सकती ना, उनके द्वारा तो प्राप्ति हो नहीं सकती, इसलिए बाबा को संतुष्टि नहीं होती थी तो 12 गुरु किए, फिर भी वो संतुष्टि नहीं थी। तो जैसे बाबा वहां सभी से मिलते थे, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को नारायण का साक्षात्कार, किसी को कोई कोई भिन्न भिन्न तरह के साक्षात्कार होने लगे तो उसमें भी लोग ये समझते थे कि दादा पहले तो ऐसी नहीं थे, अब ये कैसे बदल के आ गए, कि इन्होंने कोई जादू सीख लिया है जो जिस तरफ वो देखते हैं जिसको देखते हैं उनको साक्षात्कार होने लगते हैं, उनको शक्तियों की अनुभूति होने लगती, क्योंकि ज्ञान नहीं था इसलिए हर एक साक्षात्कार करके ऐसा समझते थे। तो बाकी तो जानते विस्तार से, मैं एक बार मधुबन में आई बाबा के पास, कमरे में बाबा के पास गई तो बाबा ने मुझे कहा बच्ची इधर आओ, तो बाबा की जो गद्दी है उसी पर बाबा बैठते थे, बच्चों से मिलते थे, तो मैं भी बाबा ने कहा बच्ची इधर आओ पास में आओ, तो मैं वहां बैठी। बाबा ने पूछा कि वो जो सेंटर है वो कितनी दूर है, नाम लिया बाबा ने उस एरिया का, तो मैंने कहा बहुत दूर नहीं है थोड़ा ही दूर है, कहे अच्छा। फिर बाबा ने वो एड्रेस मेरे को नोट कराया कि कहाँ बाबा को साक्षात्कार हुआ था, वो एड्रेस नोट करो और जाके देखना, वहां जरूर जाना। तो एड्रेस नाम सहित बाबा ने सब मेरे को दिया। फिर जब से हम आए वहां पर गए, हम लोग देखे जाकर के तो बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत अच्छा वाइब्रेशन था, और वो बंगला भी बहुत बड़ा था बाग बगीचे वाला, और छतरियां वाला वो बैठने का भी बना हुआ था, उसी में बाबा बैठ बैठ के तपस्या करते थे जो उन्होंने मेरे को स्वयं बताया। तो वहीं बाबा को वो साक्षात्कार हुए। तो सिर्फ साक्षात्कार ही नहीं, काशी शिव काशी गाई जाती है, इसलिए शिव ने वहां ही आके ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और अपना कार्य कराना शुरू किया। तो मैं एक हंसी की बात बताती हूँ, एक बार भाई साहब यहाँ पर आए थे, गुप्ता भाई साहब, तो किसी ने कहा कि आप अपना अनुभव सुनाइए, वो कभी संदली पर बैठना नहीं चाहते थे, जी के थोड़ा। तो बहनों को ही आगे रखते थे, तो फिर मेरे को भी बाबा ने ये सब कहा कि देखो आगे सभी माताएं बहने हैं और उनके द्वारा ही ये सब कार्य बाबा को कराना है। तो बाबा ने ऐसे वहाँ जो प्रवेशता हुई उनकी, तो गुप्ता भाई साहब ने ये सुनाया, किसी ने पूछा वहाँ कितने स्टूडेंट हैं, तो पहले पहले बहुत कम ही स्टूडेंट थे। जब मैं वहाँ पर गई तो बहुत कम ही स्टूडेंट थे, तो भाई साहब ने क्या सुनाया होगा कि बनारस का सबसे पहला स्टूडेंट, नंबर वन स्टूडेंट है, जो शिव बाबा का नंबर वन स्टूडेंट है वो बनारस का स्टूडेंट है। तो किसके लिए कहा होगा? ब्रह्मा बाबा के लिए कहा, क्योंकि बाबा ने ही उनको चुना, वही उनको साक्षात्कार कराया, वहां उनको सब कुछ राज बताए। इसलिए भाई साहब ने कहा कि मेरे को नाज रहता है कि बनारस का पहला शिव बाबा का स्टूडेंट ब्रह्मा बाबा है। तो इस तरह से मेरे को भी नाज रहता है, क्योंकि मम्मा ने मेरे को भेजा था बनारस में, यूपी में। यूपी के बाद थोड़े दिन बिहार में गई, लेकिन दो साल करीब। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हें वहाँ नहीं रहना है, वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुमको बनारस जाना है। तो पहले मैं सोची कि कैसे जाएंगे, वो तो इतने बड़े बड़े विद्वान आचार्य हैं, उनकी आपको जा करके सेवा करनी है। तो मैंने बाबा से कहा नहीं, मैंने सोचा मन में कि मैं तो संस्कृत भी नहीं पढ़ी हूँ, तो मैं कैसे उन सबकी सेवा करूँगी। बाबा जान गए, तो बाबा ने मेरे को फोन करके कहा कि बच्ची जो तुम्हारे पास ज्ञान है उनके पास कुछ नहीं है, वो भले इतने बड़े बड़े वेद शास्त्र पढ़े हैं, बड़े बड़े टाइटल लिए हैं, लेकिन उनकी आंखें उनकी बुद्धि का ताला तुम्हें खोलना है। तो ऐसे कह करके बाबा ने, पता नहीं वो तो जानी जाना नहार है, उन्होंने कुछ देखा हो तो कहा कि ये कार्य तुम ही कर सकती हो और तुम्हें ही करना है। ऐसे बड़े बड़े विद्वत मंडली के विद्वान और महामंडलेश्वर जगत गुरु हैं, उन सब की बुद्धि का ताला खोलने का कार्य आपको करना है। तो मैं अपने को भाग्यवान ही समझती हूँ कि बाबा ने मुझे कहा कि तुरंत वहां से वहां जाओ। मैंने बनारस में म्यूजियम बनवाया है, म्यूजियम भी कैसा था, बड़े बड़े चित्रों वाला था, बड़े बड़े चित्र बाबा ने बनाए थे और उन चित्रों के आधार में सारे विद्वानों की सेवा करनी थी, लक्ष्य बाबा का तो यही था। तो फिर मैं वहां पहुंच गई 1964 में, तो तब से लेकर के वहां सेवा करनी शुरू की। और ऐसे ही सेवा करते करते बाबा ने ये कहा, मैंने कहा पहले बाबा से कि बाबा यहाँ स्टूडेंट तो बढ़ते ही नहीं है, जिज्ञासु कोई आते नहीं है खास। तो बाबा ने कहा बच्ची मैंने जिज्ञासुओं के लिए बनारस का सेंटर नहीं खुलवाया, मैंने तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए, शंकराचार्य के लिए, विद्वत मंडली के विद्वानों के लिए, महामंडलेश्वरों के लिए ये सेंटर खुलवाया है, इसलिए तुम्हें जिज्ञासुओं के बारे में सोचना ही नहीं है, उनकी सेवा में लग जा। तो ऐसे बाबा ने मेरे को ये मौका दिया भाग्य बनाने के लिए, फिर उसी सेवा में लग गए और बाबा ने अपना सारा कार्य कराया। पहले तो बहुत विरोध करते थे, नाम भी सुनना नहीं चाहते थे ब्रह्म कुमारी का, लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि नहीं, वो कुछ भी बोले तुम्हें उनके पास हमेशा जाना है और जा जा करके उनकी आंखें खोलनी। तो फिर जाते थे, पहले पहले बहुत कुछ बोलते थे उल्टा पुल्टा, लेकिन मुस्कराते रहते थे उनकी बातें सुन करके। और फिर लास्ट में थोड़ा सा सुना कि हम आ जाते थे। तो ऐसे करते करते बाबा ने मुझे ये भी लिखा था, बच्ची वो अभी ज्ञान नहीं समझेंगे, लेकिन वो तुम्हारी धारणा से प्रभावित होकर के आएंगे। तो ताकि बाबा सोचे कि ये घबरा ना जाए कि ये ज्ञान तो सुनते ही नहीं है, तो इसलिए बाबा ने कहा पहले वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन उससे घबराना नहीं है, वो तुम्हारी धारणा से प्रभावित हो जाएंगे। तो ऐसा ही हमने देखा। और बाबा फिर बोले, जैसे मैं समाचार देती थी, बाबा ने बोला कि अभी आप उनको सेंटर पर निमंत्रण दे के बुलाओ, एक एक को बुलाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने एक एक को निमंत्रण दे के मैं और भाई साहब गए उन लोग के पास, और आते थे फिर उनको सुनाते थे। तो जो अपने वहां वो ऐसा उल्टा पुल्टा बोलते थे, लेकिन जब आश्रम पर आके सुनना शुरू किए तो एकदम एकाग्र होकर के सुनते थे और बहुत शांति से सुनते थे, मुस्कराते हुए सुनते थे, जैसे कि उनको बाबा ही बुद्धि में सब टच कर दे रहा था। हाँ, तो बाबा ने केवल कहा था बस योग युक्त होकर के उनको सुनाते रहो, तुम तो योगिन हो ही, इसलिए तुमको बाबा की ये बातें बेधड़क होकर के सुनानी है। तो सारा ज्ञान विश्व नव निर्माण प्रदर्शनी में तो सारा ज्ञान आ जाता है ना, तो वो सारा ज्ञान सुना देते थे, भले उनके हिसाब से अपोजिट पॉइंट्स थी, लेकिन वहां वो कुछ नहीं बोलते थे, उनको लगता था दिल से कि ये बातें ठीक सुना रही है। और ये मैं तो समझता था कि ये छोटी छोटी बच्ची क्या सुनाएंगी, लेकिन इनमें तो सारा ज्ञान भरा है, जो आज तक हम जो लोग शास्त्र पढ़े और उसको समझ नहीं पाए, और ये इतनी गहरी बातें बता रही। तो उनको सुना के फिर संदली पर बिठाते थे हम कि आप भी कुछ सुनाइए, फिर वो बहुत महिमा करके जाते थे बाबा के ज्ञान की, और मेरे से पूछते थे कि आपको कौन सुनाता है। मैंने कहा हमको स्वयं भगवान सुनाते, और वो भगवान ने मेरे को आदेश दिया है कि ये ज्ञान उन महात्माओं को सुनाओ, महामंडलेश्वरों को, जगत गुरुओं को, विद्वत मंडली के विद्वानों को, ये ज्ञान सुनाने के लिए बाबा ने, भगवान ने मुझे आदेश दिया। तो ऐसे फिर वो मतलब धीरे धीरे प्रभावित हुए, और बाबा ने जो मेरे को कार्य दिया था कि इनको बाबा के बच्चे तो इतनी जल्दी वो नहीं बनेंगे, लेकिन इनकी बुद्धि में आंखें खोल करके ज्ञान डालना है। तो इसके बाद फिर बाबा तो अव्यक्त हो गए, शॉर्ट में सुनाती हूँ। तो फिर हम सोचे कि अभी इतनी इनकी सेवा हुई है, अब बाबा के द्वार तक तो पहुंच जाए। तो 1988 में यहाँ बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया था, वो भी मैंने पहले अव्यक्त बाबा से पूछा कि बाबा इनकी इतनी सेवा हुई है, अब मन करता है कि इनको आपके द्वार तक पहुंचा दें। तो बाबा ने कहा कि वो तो तैयार बैठे, आप केवल जा करके कान में फूंक मार दो, वो उड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे। तो हमने ऐसे ही देखा, जैसे उन लोग को निमंत्रण देते थे सब तैयार हो जाते, और भी बड़ों बड़ों का नाम बताते थे कि उनको भी ले चलो, उनको भी ले चलो। तो 90-95 के बीच में सभी बड़े बड़े क्रीम जो थे उनमें से वो सब तैयार हुए, और यहाँ पर बाबा के घर में आए। पहला सम्मेलन साधु संतों का यहीं हुआ, अपने यज्ञ में पहली बार साधु संत यहाँ पर बनारस के तरफ से आए थे, उसमें शंकराचार्य भी थे, महामंडलेश्वर भी थे, जगत गुरु भी थे, और विद्वत मंडली को बाबा बहुत याद करते थे, उनके विद्वान भी थे, और 3 यूनिवर्सिटीज वहाँ है, उनके वाइस चांसलर भी तीनों आए थे। तो ऐसे करके सभी अच्छे अच्छे लोग आए, और पहले जो उनकी बुद्धि में अपोजिट पॉइंट्स थी कि कि ये क्रिश्चियन बना देती हिंदुओं को। तो फिर यहाँ आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारे विदेशी भाई बहने भी उस समय थे, तो उन्होंने कहा ये तो हम लोग उल्टा समझते थे। उन सब से बुला बुला के वो अनुभव पूछते थे कि क्या ज्ञान समझते हो, क्या सुनाते हो, तो अपना ज्ञान सुनाते थे। तो फिर कहा सभा में उन्होंने सुनाया कि हम उल्टा समझते थे, ये तो क्रिश्चियन को हिंदू बना रही है, ना कि हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रही। तो वो बात बहुत बड़ा उनका था, और शक बुद्धि में वो भी निकल गया, बहुत सारे जो भ्रम थे वो भी आके मिट गए और बहुत प्रभावित हुए। फिर वो लोग अपने स्थान पर जा कर के, और फिर उन्होंने अपने संत समाज जहाँ जहाँ भी भारत में थे, उन्होंने सबको ये संदेश दिया कि अब हमको इनका विरोध नहीं करना है, इनके मददगार बन करके चलना है, क्योंकि जो कार्य ये लोग कर रही हैं, हम लोग करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे, ये लोग कर रही हैं प्रैक्टिकल। तो ऐसा करके मतलब बाबा ने ये सेवा कराई, हमने नहीं की, बाबा ने सेवा कराई है। तो बाबा के घर में आए, बहुत अच्छा प्रभावित होकर के गए, और फिर तब से लेकर के हर साल ये सम्मेलन होता ही रहता है अपने यज्ञ में, और साधु संत तब से आते ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जाके बहुत हरेक की सेवा की थी। इसलिए बाबा ने मेरे को ये भाग्य दिया, और मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। और जो भी मैं कार्य करती थी वहाँ सेवा का, बाबा से ही मैं पूछती थी, डायरेक्शन लेती थी, बाबा वरदानों के साथ साथ मेरे को डायरेक्शन देते थे कि अभी ये करो, अभी ये करो। वैसे ही जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो सेवा में वृद्धि भी होती है, हर कार्य में सफलता मिलती जाती है। इसलिए मैं जब बनारस पहुंची थी तो एक ही सेंटर था, वो भी चलता नहीं था। बाबा कहते थे कि बनारस का सेंटर लंगड़ा रहा है तो ऐसे बाबा पहले कहते थे। लेकिन बाद में फिर जब बाबा ने कहा कि बच्ची, मैंने पूछा क्या करें, कहा कि और बाहर भी सेंटर खोलो, अब बनारस से बाहर सेंटर खोलो। ये बाबा के डायरेक्शन से मैंने वो सेंटर खोलना शुरू किया था। तो हम लोग सेवा करते 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 नेपाल तक पहुंच गए, और बीच में बाबा से मैंने कहा, जब उन्होंने बोला तो 7-8 सेंटर थे, एक मैं अकेली कैसे करूंगी सेवा, मैं थी, एक माता जी और गुप्ता भाई सब थे। तो बाबा से मैंने कहा, बाबा आपने कहा था सेंटर तो इतने खुल गए, 7-8 सेंटर खुल गए, अब हैंड्स भी तो चाहिए। तो बाबा ने वरदान पता क्या दिया था, बाबा ने कहा, बच्ची तुमको बहुत हैंड्स मिलेंगे, और अच्छे अच्छे हैंड्स मिलेंगे, चिंता मत करो। तो सचमुच में बाबा के वरदान से ही हमारे पास करीब बहुत सारी बहनें हैं, 1200 करीब हमारी बहनें हैं, और 200 करीब अपने समर्पित भाई हैं। तो अकेली मैं और बाबा ने इतने सारे मेरे को हैंड्स दे दिए, तो ये बाबा का वरदान ही तो है। तो अभी मैं कभी फिर सुनाऊंगी विस्तार से। अभी आप लोग को जो भट्टी का अनुभव हुआ, वो आप लोग अपना अपना अनुभव सुनाइए।
बहुत सुंदर दीदी ने हमें अपना अनुभव सुनाया, लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस भट्टी का अनुभव सुनाएंगे, ज्ञान में कैसे आए, क्या अनुभव किया वो नहीं सुनाएंगे। इस भट्टी में आकर क्या अनुभव किया, क्या छोड़ के जा रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं, शॉर्ट एंड स्वीट अपना अनुभव सुनाएंगे। तो आप लोगों ने डिसाइड तो नहीं किया, आपके भाई बहन भी आपको नहीं पता है किसको इनवाइट करना है, तो ऐसे ही हम बोलते हैं, जो भी तैयार हैं अनुभव सुनाने के लिए आएंगे सामने। ये माइक यहाँ रख रहे हैं हम, और आपको उठा के सुनाना है, आ जाइए, क्योंकि समय अभी कम है, 4 या 5 लोगों को चांस मिलेगा, तो 2-3 भाइयों की तरफ से और 2-3 बहनों की तरफ से।
ओम शांति। आदरणीय बड़ी दीदी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ पर जो है भट्टी का आयोजन किया गया और 3 दिन के भट्टी में हम लोगों को बहुत कुछ प्राप्त हुआ यहाँ पे। अभी ज्ञान में चलते हुए लगभग 20 साल हो गया, लेकिन लग रहा था कहीं पे स्टेग्नेंसी आ गई है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही थी। वही उठना, जैसे भी कल की क्लास में सुना, मैकेनिकल हो गया था हर चीज, बस सुबह उठना, अमृत बिला करना, मुरली सुनना, घर जाना, और जॉब मेडिकल की तो वहां जाकर नेगेटिव हो जाना क्योंकि वहां की परिस्थितियां, नेगेटिव लोगों से मिलना। तो ऐसा करते करते लग रहा था ये कुछ खत्म हो रहा है, अब कुछ जरूरत है। इसी बीच में शायद बाबा ने मेरी बात सुनी और यहाँ भट्टी का क्लास हमको पता चला 3-4 महीने पहले। तो हमने बोला नहीं हम जाएंगे, तो हमारे घर वाले बोले नहीं जा पाओगे क्योंकि 2 बार बाबा मिलन में नहीं आ पाए थे। तो बाबा ने यहाँ बुलाया, हम यहाँ पे आए और 3 दिन से हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं। सभी हमारे बड़े विद्वान, बड़े भाई जिनके भी हमने क्लास किया यहाँ पर, बड़ी बहनें जिनका भी हमने क्लास किया, उनसे जरूर हमको ये सीखने को मिला है कि कैसे अब अपनी स्टेग्नेंसी को खत्म करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो जो भी चीजें यहाँ सिखाई गई हैं उसको अप्लाई करना है। तो आज यही सोच रहे थे कि यहां से जाने के बाद फिर से तो वैसे नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वो इसी तरह का माहौल, उसी तरह का वातावरण, फोन आता है तो दिमाग में ये चलता रहता है। लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि नहीं, यहां पर उसको अप्लाई करना है, जो भी यहां पर भाइयों ने बताया उसको अप्लाई करना है, तो हम समझते हैं कि अगर उसको अप्लाई किया जाएगा तो जरूर हम लोग के जीवन में परिवर्तन आएगा। और जो हम लोग का लक्ष्य है आगे बढ़ना, परिवर्तन लाना, अपने में परिवर्तन लाना और दूसरों में परिवर्तन लाना, ये जरूर पूरा हो सकेगा। इस भट्टी का उद्देश्य यही था। हम बहुत खुश हैं, हम आदरणीय बड़ी दीदी से फिर कहेंगे कि ऐसी भट्टियों का आयोजन करवाती रहें जिससे हम लोग बीच बीच में आकर अपनी धार को हम लोग अपना पैनी करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी दीदियों का धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। आदरणीय बड़ी दीदी जी, वरिष्ठ दीदियां, हम लोग जो है, मेरा नाम शरीर का वीरेंद्र भाई, रेणुकूट से हूं। पहले हम लोग बाबा मिलन में या शुरू शुरू में तो योग शिविर में आए, तो जब यहां आते थे हम लोग तो जो है देखते थे तो बाबा के रूम में एक से एक मिनट भी नहीं रुकने को मिलता था, या बाबा की झोपड़ी में या वो शांति स्तंभ के पास, तो बड़ी लालसा होती थी कि कुछ समय मिलता कि जब हम लोग जाते तो तपस्या करते, क्योंकि जो भी पुस्तकें पढ़े हैं चाहे जो भी अनुभव सुने हैं कि बाबा ने पूरी तपस्या यहाँ ही की। तो इस बार जब भट्टी, अभी तो जनवरी में ही हम लोग आए थे भट्टी में मानसरोवर में, लेकिन फिर मौका मिला तो हम लोग आए। आने के बाद अनुभव ये हुआ कि जब बाबा के कमरे में या झोपड़ी में या जहां भी बैठते हैं, तो पहले हम लोग जब योग में बैठते थे तो कुछ समय तक तो युद्ध चलता था, दिन भर के जो क्रियाकलाप रहता था तो वो सब दिमाग में आता था, तो बड़ा देर तक जो है चिंतन मनन करने के बाद जो है हम लोग परम धाम कुछ समय पावर लेते थे। लेकिन ये विशेषता देखने को, महसूस करने को मिली, और शायद सभी भाई बहनों का यह अनुभव होगा कि बाबा के कमरे में ज्यों प्रवेश करिए तो ऐसा फोटो भी लगा है कि बाबा का लगेगा कि सबको देख रहा है, सबको दृष्टि अलग अलग दे रहा है, तो लगता है कि बाबा कह रहा है कि बच्चे आ गए, आओ शक्तियां पूरी भर के जाना, और तुरंत योग लगता था, परम धाम तुरंत जो है जुड़ जाते थे और तुरंत बिल्कुल देर नहीं लगता था, कोई युद्ध नहीं, और बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छा रहा। 2-3 दिन 4 दिन का समय कैसे बीता पता नहीं चला, लेकिन शक्तियों की अनुभूति बहुत हुई, पावर बहुत जेनरेट किए, शक्तियां ली बाबा से। बाबा का लाख लाख थैंक्स और हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का बहुत बहुत थैंक्स। तो धन्यवाद।
ओम शांति जी। मैं अपना अनुभव ये सुनाना चाहता हूँ कि बाबा के धरनी पे आके पहली बार मैंने ये योग भट्टी करी है, और यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हैं, जैसे घर पे हम लोग योग लगाते हैं तो हमारा योग उतनी जल्दी लगता नहीं है, विचार आते हैं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद परमात्मा शिव की ये भूमि है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने यहाँ पे योग किया है, उनकी तपस्या भूमि है, इस वजह से यहाँ के वाइब्रेशंस ने यहाँ बहुत हेल्प किया हमें और हमारा योग तुरंत लगता था। एक चीज मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा, यहाँ का जो भोजन मिलता है हम लोग को वो शायद इतना योगयुक्त होकर बनाया जाता है कि जब हम लोग उसको ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे योग की शक्ति, योग करने की शक्ति बहुत अच्छे से हमें मिलती है, जैसे लगता है कि बाबा ने उसमें पूरा प्रेम घोल दिया हो।
ओम शांति। आदरणीय जो है दीदी जी, भट्टी में मैं पहली बार आया हूँ, जाना था हमको पूना शादी में, पता चला कि भट्टी कार्यक्रम है। मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ, शाहपुर सेंटर से। तो पाहुल दीदी ने कहा कि भाई भट्टी में चलना है, तो वहाँ ना जा करके यहाँ आ गया। तब लगा कि मेरा निर्णय बहुत सही है, यहाँ आ करके इस कैंपस में आने के बाद लगा कि बाबा जो है हर कोने पर, हर क्षेत्र में मौजूद है और हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं। यहाँ की व्यवस्था को देख करके, चाहे नाश्ते की हो, चाहे खाने की हो, चाहे रहने की हो, अलौकिक, अप्रतिम, अकल्पनीय है। ऐसी व्यवस्था मैंने कहीं दुनिया में देखी भी नहीं है। कई जगह मैंने गया लेकिन ये व्यवस्था मैंने नहीं देखी। इस भट्टी में कार्यक्रम में मौजूद था तो 5 दिन कैसे बीत गए वो पता ही नहीं चला। दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं मालूम है, केवल यही का जो है ऊर्जा यहाँ से इतनी मिली, इतना मिला जो है कि जितने जो भट्टी में आदमी आता है अपने को तपने के लिए, सोना भी जो है तपता है उसके बाद 100% शुद्ध हो जाता है। कुम्हार भी मिट्टी के बर्तन में तपाते हैं तब बर्तन सही बनते हैं। इसीलिए मनुष्य भी जो है जब भट्टी में आते हैं तपते हैं तो अपने को शुद्ध बनते हैं और जितने विकार हैं विकार जो आपके भस्म जाते हैं। तो भट्टी में जो भी मतलब सुना गया, ज्ञान की बातें सुनी गई, ऐसे लोगों सुना गया जिनको YouTube पर भी देखते थे, तो उनको प्रत्यक्ष रूप से उनसे सुना गया तो उनकी बातों को, उनके ज्ञान की बातों को अपने जीवन में आत्मसात करें और इससे हमारा जीवन जो है वो सफल होगा। ये जो है ओम शांति।
ओम शांति।
नहीं भले बैठे, समय की कमी है बहुत और मैं समझती हूँ आप चौथे भाई आए हैं ना। हाँ तो 5 भाई और 5 बहने ऐसे करें। एक एक मिनट में शॉर्ट एंड स्वीट।
ओम शांति। एक्चुअली दीदी ने कहा था कि लकी सितारे को होना, तो हम, मैं और मेरा लौकिक बेटा है, हम 2 लकी सितारे निकले। हम आए पंजाब से, फिरोजपुर से, तो वहां पे सुनते थे कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। तो मधुबन की खुशबू हमें यहां पर आके मिली है। ऐसी खुशबू मिली कि जैसे बागवान ने यहां पे इतनी बड़ी बगिया खिला रखी है और वो बगिया का आनंद हम लोगों ने यहां पे आके लिया है। ऐसा आनंद हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। शरीर का नाम विमलेश द्विवेदी, बनारस से। ये मेरी दूसरी भट्टी का अनुभव है। इससे पहले 5 वर्ष पहले 2018 में भी मैं यहाँ की योग भट्टी करने का सौभाग्यशाली रहा हूँ। बाबा की इस वरदानी भूमि को मैं तो परिवर्तन भूमि कहूँगा कि यहाँ भाई बहने जो भी हैं, हमें बताया गया कि 4 सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो यहाँ के जो होली हंस भाई बहने हैं ये चारों सब्जेक्ट में तपे हैं। इनमें सब कुछ सीखने को ही मिलता है, ज्ञान रत्न से भरपूर सारे भाई बहने, योग में भी तपे हुए, धारणा में भी। तो वो सबकी वाइब्रेशन बाबा की ये तपोस्थली होने के नाते भी और उनके जाने के, अव्यक्त होने के बाद भी जो सेवाएं चल रही हैं वो हम सबको प्रत्यक्षता का अनुभव कराती हैं और एग्जाम्पल बनने के लिए प्रेरित करती हैं। यहाँ रहने की जो व्यवस्था है, खाने पीने की, वो क्या बताया जाए, वो अपने परिवार में भी कभी ऐसा नहीं मिलेगा जितनी अच्छी व्यवस्था भाई बहने यहाँ के किए हैं। तो भट्टी का जो अनुभव रहा है कि हमें जो मन में कमी कमजोरी अब तक की रही है, अब वो सब लगता है कि इस भट्टी के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति।
ओम शांति। योग भट्टी में दो अर्थ तो मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैं अर्थ में ये प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं अपने घर पर भी पॉजिटिव वाइब्रेशन दूंगा, मेडिटेशन करूंगा डेली। योग भट्टी में से जीवन सफल हो गया। ओम शांति।
ओम शांति। बड़ी दीदी कांगौरी बहने और भाइयों, इस भट्टी के हम तो भट्टी में दूसरी दो बार आए हैं। भाई आबू में जो है यहाँ पर पांडव भवन में हम पांचवी बार है, अंतिम पांच बार है। और दीदी से 18 में जो भट्टी आई थी यहाँ पर, तो कहे थे हम कि दीदी जी जो इसको तो कहे तो लेकिन 3 वर्ष पे आता है, लेकिन हमको ये हमको भट्टी का बहुत जो है मैं ये संकल्प था। तो बहन जी जो है हमको टिकट कटवा दिया था बाबा मिलन में, लेकिन वहाँ नहीं आए। और बहन जी ने कहा जिस दिन सुबह कि आपका संकल्प पूरा हो गया, तो हमको बहुत खुशी हुई। और उस दिन से लेकर खुशी खुशी में आज आ गए। और जिससे बड़ी दीदी को महामंडलेश्वर को जो है आने से खुशी हुई, हमको जो है ये महामंडलों के मैं बाप जो है ये सब महामंडलों के बाप बैठे हुए इनको देखकर खुशी हो रही। ओम साहब।
ओम शांति। शरीर का नाम डॉक्टर पूनम वर्मा है। ज्ञान में 15 वर्षों से हूँ, लेकिन भट्टी में पहली बार आई हूँ। बाबा को धन्यवाद, दीदियों को और सभी दीदियों को पहले धन्यवाद करूँगी। भट्टी का विशेष अनुभव मुझे बहुत अच्छा हुआ, योग में भी और ज्ञान में भी। विशेष अमृत वेला बहुत अच्छा लगा। जब मैं अमृत वेला आती थी तो दीदियों की जो दृष्टि है वो बहुत विशेष लगी, और त्रिवेणी दीदी ने भी बहुत अच्छी दृष्टि दी। जितने भी क्लासेस हैं वो सभी पुरुषार्थ के मार्ग पे चलने के लिए भी अग्रसर कर रहे हैं, और जो भी कमी कमजोरी है उसको भी मैं दूर करने के लिए प्रयास कर रही हूँ। सुबह हम लोग वॉक के लिए जाते हैं, भाई जी ले जाते हैं वॉक फॉर वेलनेस के लिए, तो उसमें एक चीज़ सीखने को मिली कि अब हमें किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। वैसे भी मैं मांगती नहीं हूँ किसी से, समय पर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो ऑटोमेटिकली बाबा दे ही देते हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी एक मांगना रह जाती है। तो आज से मैं भट्टी से यही ले जाऊंगी कि सूक्ष्म में भी मेरी कोई भी मांगना ना रहे। और ये विशेष चांस मिला, भट्टी में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था, मतलब मुझे ये चांस नहीं मिला, लेकिन फिर भी दीदी का अचानक फोन आया और 2 घंटे में पैकिंग हुई। तो पावर टू पैकअप को भी कैसे बाबा ने यूज कराया, बाबा का विशेष धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति दीदी। मुझे 2-3 महीना पहले मैं भोजवीर सेंटर से हूँ, और 3 महीने पहले हमें वंदना दीदी बोली कि आपका गोल्डन चांस आया है, आपको भट्टी में जाना है। ये सुन करके हमें बहुत खुशी हुई। और उसके जस्ट 2 दिन पहले मेरा बेटा बोला कि मम्मा आप अभी 2-3 महीने आपको कहीं नहीं जाना है, क्योंकि मेरी बहू की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी। तो मुझे मतलब एक तरफ बेटे की बात और एक तरफ दीदी की बात, दोनों बात मन में चल रही थी कि मैं करूं क्या। फिर मुझे लगा कि बाबा कहते हैं कि कोई भी काम युक्ति से करो, तो मैं 2 महीने एकदम मन में छुपा के रखी थी, मतलब घर में मैंने चर्चा ही नहीं किया, और अपने युगल को भी बताई कि इसे आप भी मत बोलना। फिर मेरी बहू की मम्मी आई तो उनको मैंने कहा कि जी, तो फिर मैं यहाँ आई। मुझे क्या कहता है मौका मिला यहाँ आने का, 2015 में भी मैं आई थी, तो वहाँ पे जब यहाँ आई तो झोपड़ी में मुझे बहुत अच्छा लगा बाबा की कुटिया में, तो वहाँ पे मुझे मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं रुकने को मिला। और मैं सोच रही थी कि 1 सेकेंड जा करके एक बार और बाबा को झांक लूँ फिर जाऊँ। तो मेरे साथ जो सेंटर की थी विद्या माता वगैरह, तो वो हमको मना कर दी कि नहीं जाना है। तो उस दिन पता नहीं क्यों अचानक बहुत आंसू मुझे गिर रहा था। फिर अभी आई हूँ तो लगता है कि जितना भी मौका मिले मैं मतलब कि बाबा की कुटिया बाबा के कमरे में ही रहूं। तो मैं अमृत वेले से आती हूँ तो दिन भर मैं यहीं पे बिताती हूँ, रात में ही मैं सोने के लिए जाती हूँ और उस बीच में मतलब मैं नहीं जाती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा चांस मिला, और बहुत अच्छा भाई साहब और बहनों का जो ज्ञान मिला उसको मैं आगे भी मतलब कि कंटिन्यू अपने ज्ञान को बनाए रखूंगी। ओम शांति।
ओम शांति। मेरा इस देह का नाम है उषा और मैं सेठ कॉलोनी बलिया से सेंटर से जुड़ी हूँ। जहाँ तक इस भट्टी का अनुभव की बात है वो बताने लायक नहीं है। गुड़ सब जानता है, गुड़ कैसा लगता है, गुड़ कैसा लगता है, मीठा कैसा होता है, मीठा कैसा होता है बताइए। तो अभी तक हम मुझे ऐसा लग रहा था या लगा है कि हम सागर के किनारे बैठकर डूबने के डर से लोटे से नहा रहे थे। सागर के किनारे बैठकर के डूबने के डर से लोटे से नहा रहे थे, लेकिन यहां आए भट्टी किए तो हमको डूबना सीखना पड़ा। डूबना सिखाया गया कैसे डूबा जाता है। जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक कुछ पाएंगे नहीं। बस मेरा इतना ही अनुभव है।
ओम शांति। आप सभी को ओम शांति। मैं सलेमपुर सेवा केंद्र से ज्योति दीदी के साथ आई हूँ और मेरी भाषा टूटती फूटती है, मैं सही बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन खाली मैं जो कहूंगी उसको आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। 3 दिन 18, 19 और 20 तीन दिन की योग की भट्टी का अनुभव हमारा अलग अलग रहा है। पहले दिन की भट्टी में बाबा ने मेरे मन बुद्धि और संस्कारों को कचरों को साफ किया और स्वच्छ बनाया। कैसे साफ किया ऐसे अब पूरा विस्तार तो करेंगे तो बहुत ज्यादा होगा। और सारा ही चित्रों के माध्यम से समझाया। जिस ज्ञान को हम मुरली से क्लासों से दूसरे के अनुभवों से सुनते थे उसी को बाबा ने हमको चित्रों के माध्यम से अनुभव कराया। दूसरा अनुभव बाबा ने कराया हमको कि मुझे अंदर से आत्मा का ऑपरेशन किया और उसमें से सभी विकारों को चिमटी से पकड़ पकड़ के निकाला। देखती क्या हूँ कि मैं आत्मा बाबा की याद में बैठी हूँ और बाबा से पतली सी खूब शक्तिशाली किरण आत्मा में आई और आत्मा खुल गई। और बता नहीं पा रही हूँ, आप लोग समझिएगा। तो देखती हूँ कि बाबा कह रहे हैं बच्चे इसमें तो कचड़ा भरा है। हमने कहा बाबा वो क्या है, तो बाबा ने पतली सी चिमटी पकड़ी थी हाथ में और उन्होंने खींच के निकाला ये तो क्रोध है, फिर निकाला ये देखो ये लोभ है, फिर निकाला ये देखो ये तो ईर्ष्या है। हमने कहा बाबा ये सब अभी इसमें भरा था। तो सब बाबा निकाले और उसके बाद जैसे डॉक्टर लोग दवाई का स्प्रे करते हैं ना ऑपरेशन के बाद, वैसे बाबा से ऐसा लगा कि कोई ऊपर से फुहारा टाइप का किरण आया और वो आत्मा ठीक होके फिर से सिमट गई, फिर मैं लाइट की बन गई। उसके तुरंत बाद अभी इसको हम अनुभव कर ही रही थी तब तक क्या देखती हूँ कि मेरे चारों ओर से हुक ऐसे फंसे हुए हैं और जंजीर लगा हुआ है चारों ओर मेरे और हुक फंसा है मेरे में आत्मा में। तो देखती हूँ कि बाबा की हाथ में कैंची है। और बाबा कैंची से सभी रस्सियों को जंजीरों को काट रहे हैं और काट लिए। मैंने कहा बाबा ये क्या हो रहा है, तो दिखाए बाबा दिखाए कि किसी रस्सियों के सामने लिखा था संबंध, किसी को दिखाया ये वस्तु था, किसी को दिखाया ये कोई लगाव था। हमको पूरा इतना नहीं समझ में आया। उसके बाद जब इन सभी को लगा हाँ वही तो बताएंगे तो विस्तार हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे 3-4 अनुभव 3 दिन में बाबा हमको 3-4 अनुभव कराए हैं ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। माता जी ने बहुत सुंदर अनुभव सुनाया सभी के तरफ से। हमें लग रहा है बाबा ने उन्हीं को अनुभव कराया जो सबको होना चाहिए था। और दादियां कहती थी जब हम लोग भट्टी में आते थे कि आप भट्टी करके जाओ तो सेंटर पर जाने पर ऐसा सबको महसूस हो कि ये लोग कुछ परिवर्तन होकर आए हैं, एकदम शांत शीतल। तो अब हम बड़ी दीदी सामने बैठे हैं, क्या कहूँ, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ये दादियों की बात अभी याद आया कि आप जब सेंटर में जाएं तो सभी लोग जो भाई बहन हैं अनुभव करें, आपसे वाइब्रेशन लें कि ये लोग बदल करके आए हैं, शक्ति भर के आए हैं, भट्टी करके आए हैं, तो कुछ इन्होंने पाया है ऐसा फील हो जो हम लोगों को अभी दादियों ने, दीदियों ने, भाई जी लोगों ने अनुभव कराया, क्लास कराया। उसको हम अगर ध्यान में रखेंगे, स्मृति में रखेंगे तो अवश्य ही जीवन में परिवर्तन आएगा। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी को मालूम है पहले दिन भट्टी के हम सबको थीम दिया गया था महसूसता की शक्ति द्वारा परिवर्तन। क्योंकि कई बार हम भले भट्टी कर लेते हैं, जिस समय भट्टी कर रहे होते हैं उस समय महसूस कर लेते हैं, फिर बातें, परिस्थिति, समस्याएं वापस हमारे जीवन में आती है तो भट्टी में जो संकल्प किया, वायदे किए, परिवर्तन करने का संकल्प किया, वो सब मिस होने लगता है। इसलिए इस बार के भट्टी में हमने ये संकल्प किया है कि जो बाबा ने हमें संकल्प कराया, वायदा कराया, अनुभूति कराया, वो खुद में महसूस करते रहना है और दूसरों को भी महसूस कराते रहना है। क्योंकि समय ऐसा आ रहा है कि हमें किसी को नहीं देखना है, केवल स्वयं को देखना है। जैसे भाई साहब ने, जगदीश भाई साहब ने बताया, ना देखना है ना दिखाना है, स्वयं को देखना है, है ना। तो इसलिए अपने आप को देख करके आगे बढ़ना है। तो इस भट्टी में इतनी सुव्यवस्थित ऑर्गेनाइज करने वाली हमारी इंदिरा दीदी जी को मैं सबसे ज्यादा थैंक्स बोलना चाहूंगी, जो टाइम टाइम से आकर के हमारे भाई बहनों को, क्लास करने वालों को भी, इतना कराने वालों को इतना तैयार करके और हम सबको कोई चीज की कमी नहीं रहने दिया। इसलिए हम इंदिरा दीदी का बहुत 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 थैंक्स करते हैं। साथ साथ हमारे बाप दादा, दादियां तो हमारे बीच सूक्ष्म में उपस्थित आई हैं, और हमारी आदरणीय बड़ी दीदी जी जिन्होंने ये चांस यहाँ से लिया और हम सबको चांस दिया, तो हम सब की तरफ से आदरणीय बड़ी दीदी जी का भी हम बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे। और आप सभी का भी बहुत थैंक्स जो इतना तन मन से, लगन से आकर के आपने भट्टी किया, भट्टी को सफल बनाया। लेकिन सफल तब माना जाएगा जो आज आप संकल्प करके जा रहे हैं वो आपके जीवन में दिखें और दूसरों को दिखाएं, तब ये भट्टी सफल मानी जाएगी। तब हमारे बाबा, मम्मा, दादियां, दीदियां सब बहुत प्रसन्न होंगे और ऊपर से दुआएं देते रहेंगे, ठीक है ना। ओम शांति।
ओम शांति। तो आप सभी ने अनुभव सुनाए और एक दो को सुनकर सबको उमंग तो आता ही है, लेकिन समय की सीमा है इसलिए हमने सब ब्रेक लगाया। लेकिन आप जहां पर से भी आए हैं वहां अवश्य अपनी क्लासेस में अपने अनुभव सुनाना। बाकी आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। आपके आने से ही बाबा का घर सजता है। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे तो बाप के घर के श्रृंगार है, तो आपके आने से ये आंगन सजा। और बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अगर हिम्मत का एक कदम उठाते हैं तो बाबा हजार कदम सहयोग के देने के लिए तैयार है। तो अवश्य आप सभी ने जो सुंदर सुंदर परिवर्तन के संकल्प यहाँ किए हैं, हिम्मत रखी है, तो बाबा अवश्य आपको मदद भी देंगे। और साथ साथ ये हमारी आखिरी मीटिंग है जहाँ हम एक साथ सभा में बैठे, बाकी कल से तो फिर चलते फिरते ही मिलेंगे जी। हाँ, सुबह का अमृत वेला, और चूंकि कल आखिरी दिन है और इसलिए अमृत वेला तो नहीं मिस करना है। बाकी आपको ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा ओपन में बैठकर अमृत वेला करना है तो कल के दिन आप सभी को छुट्टी है, अमृत वेला मिस नहीं करेंगे। बाकी हाँ, यहाँ पर भी चलेगा ही चलेगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुझे शांति स्तंभ पर बाहर में बैठ के करना है तो कल आपको छुट्टी है। कुटिया और कमरे में तो 5-10 मिनट की मार्जिन है, बाकी शांति स्तंभ ओपन है। अगर आपको लगता है कि हमें ओपन में बैठ के करना है तो कल के लिए छुट्टी है, और ये भी खुला है जिसको लगता है कि नहीं बाहर ठंडी लग रही है तो यहाँ पर भी आकर कर सकते हैं। और आप कल वापसी यात्रा के लिए तैयारी करेंगे तो आपकी वापसी यात्रा सुखद हो, अच्छी हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत गुड विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभ भावनाएं। और यहीं पर, और दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू जो इतनी बढ़िया सी बगिया तैयार करके लाई आपने, और जो पहले दिन सारे डायरेक्शन दिए सबने यथासंभव उसका पालन किया, उसके लिए आप सभी को थैंक्स, हमारी सभी दीदियों का भी थैंक्स जो अपनी छोटी छोटी बगिया को यहाँ पर तैयार करके लाए। तो सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और अभी बाबा की याद के साथ पूरा करेंगे।